सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही सुंदर कविता लाई हूँ और बहुत ही मार्मिक कविता है। इस कविता का नाम है भिक्षुक और इसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी, जिनको कि हम निराला के नाम से भी जानते हैं। आपका जन्म 1897 में बंगाल में हुआ था। कहते हैं आपका पारिवारिक जीवन काफ़ी कष्टमय रहा है, मगर साथ में ये भी कहा जाता है साहित्य ने आपको ऐसा सहारा दिया कि बस आपकी अनोखी छवि हम सबके सामने आई है। आप बहुत ही स्पष्टवादी कवि रहे हैं, ये आपके साहित्य में बहुत अच्छी तरह दिखाई पड़ता है। आप बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। आपकी कुछ रचनाएं जो साहित्य में अपना विशेष स्थान रखती हैं, उनमें है अनामिका, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अप्सरा, जिन्होंने साहित्य में अपना विशेष स्थान बनाया है। आज की ये कविता एक भिक्षुक पर आधारित है और बहुत ही मार्मिक चित्रण कवि ने किया है। तो चलिए देखते हैं आज की कविता, मगर उससे पहले आपसे मैं एक विशेष बात कहना चाहती हूँ। पूरी कविता ध्यान से सुनिएगा और बीच बीच में मैं कुछ क्वेश्चन के आंसर्स बता रही हूँ तो ज़रा और ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कुछ समझ में भी आ जाए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और आपके कमेंट्स का हमेशा की तरह हमें बहुत इंतज़ार रहता है। तो चलिए कविता शुरू करते हैं भिक्षुक। कविता का पहला चरण कुछ इस तरह से है। वह आता दो टुक कलेजे में करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुँह पटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या, कवि हमें क्या बताना चाहते हैं। एक भिक्षुक यानी कि एक भिखारी की व्यथा बता रहे हैं। कवि कहते हैं एक भिखारी है जो आता है और बहुत ही पछताता है, उसे बहुत ही अफसोस होता है, फिर भी वो पथ पर आता है, फिर भी वो रास्ते पर आता है। उसकी दशा बहुत ही दयनीय है, देख करके कलेजा कट जाता है। उसको देखने के पश्चात ऐसा लगता है कि कलेजा कट के रह गया। उसकी ऐसी दीनहीन दशा जो लोगों के हृदय में टीस की तरह चुभती है, मगर इसे ही कहते हैं कर्म। जो जैसा बोता है उसे वो काटना ही पड़ता है, उसे वो भोगना ही पड़ता है। हम सिर्फ दया दिखा सकते हैं, हम किसी का जरा सा भी कष्ट कम नहीं कर सकते। बस हाँ, कहते हैं किसी को तकलीफ है तो हम उस पर एक मरहम लगा सकते हैं, और वो मरहम होती है सहानुभूति की। मगर हाँ, यहाँ पे भिक्षुक की स्थिति बहुत ही दयनीय है। वह अपने दुर्भाग्य पर बार बार अफसोस करता है, अपने भाग्य को बार बार कोसता है और बस सड़क पर चल रहा है। ऐसा लगता है उसे देखकर कि उसने महीनों से खाना नहीं खाया है। उसका पेट और पीठ जैसे आपस में चिपक गए हैं। बिना भोजन के ऐसी ही स्थिति होती है। इसे देखकर हम सबके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, भोजन का सम्मान करिए। वो भिखारी इतना कमज़ोर हो गया है कि एक डंडे के सहारे चलता है, एक लठिया के सहारे चलता है। यहाँ पे कवि ने लकुटिया कहा है। लकुटिया का तात्पर्य होता है एक डंडा जिसके सहारे वो चल रहा है, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो गया है, उसके शरीर में चलने की ताकत नहीं है। भूख तो सभी को लगती है, चाहे वो अपने आप को कितना भी कोसता रहे। अपनी परिस्थितियों पर कितना भी रोता रहे, मगर भूख मिटाने के लिए तो सबको ही कर्म करना पड़ता है। यहाँ पर भिखारी अपनी भूख मिटाने के लिए, मुट्ठी भर दाने के लिए अपनी फटी हुई झोली फैलाए हुए है, ठीक उसी तरह जैसे उसका मुंह बस खुला हुआ है। काश कोई दया कर दे और एक मुट्ठी दाना दे दे, सिर्फ एक मुट्ठी, जो उसकी भूख को थोड़ी तो शांत कर दे। उसकी ऐसी स्थिति सभी के लिए बहुत दयनीय है, बड़ी ही कष्टप्रद है, मगर भाग्य कर्म शायद कभी हम सबको भी यही बताना चाहते हैं, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, भाग्य को कोसने से कुछ नहीं होने वाला है, जो है वो भोगना है। साथ ही हम अपने आने वाले कल को सुधार सकते हैं, संवार सकते हैं, आखिर हम मनुष्य हैं, हम में ये ताकत है, बस अपनी ताकत को पहचानने की ज़रूरत है। मैंने आपको बताया था मैं बीच बीच में आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बता रही हूँ जो आपके रिटन एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, भिक्षुक के पेट पीठ एक क्यों हो गए हैं और वह एक लकुड़िया के सहारे क्यों चल रहा है? बहुत लंबे समय तक भोजन ना मिल सकने के कारण भिक्षुक के पेट और पीठ आपस में चिपक गए हैं, वो एकदम कमज़ोर हो गया है, उसके शरीर में ज़रा सी भी ताकत नहीं है, इसीलिए वह एक लकुटिया के सहारे अर्थात एक डंडे के सहारे चल रहा है, एक लाठी के सहारे चल रहा है। यहाँ पर भिखारी अपनी भूख को शांत करने के लिए क्या प्रयत्न करता है? भिखारी जो पेशे से भिखारी है उसका कर्म ही वही है, वह अपनी भूख को शांत करने के लिए मुट्ठी भर अनाज की भीख मांगता है। उसकी फटी पुरानी झोली ठीक उसी की तरह मुंह बाए हुए है, मुंह खुला हुआ है कि बस एक मुट्ठी अनाज और शरीर में जान आ जाए। कविता का अगला चरण देखते हैं। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, और दाहिना हाथ और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए, भूख से सूख ओठ जब जाते हैं, भूख से सूख ओठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। इसकी व्याख्या कुछ इस तरह से है, आपका भी कलेजा पसीज गया होगा ना, बहुत ही मार्मिक कविता है। उस भिखारी के साथ दो बच्चे भी हैं, उनकी स्थिति भी वैसी ही है, भूख के मारे पेट में मरोड़ उठ रही है, बेइंतहा तकलीफ है, वो बच्चे बाएं हाथ से अपने पेट को मल रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है भूख के मारे, और दाहिने हाथ से हाथ फैले हुए हैं दूसरों की दया दृष्टि पाने के लिए, दूसरों से थोड़ा सा अन्न पाने की उम्मीद से हाथ फैलाए हुए हैं। बहुत ही तकलीफ होती है देख करके, कवि की इस कल्पना की मैं सराहना करती हूँ और आप सबसे भी प्रार्थना करती हूँ, कभी किसी भिखारी का अपमान मत करिए। अगर कुछ दया कर सकते हैं, अगर कुछ मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। हाँ, पैसे की मदद कभी मत करिए, क्योंकि आजकल तरह तरह के भिक्षुक होते हैं। हाँ, आप थोड़ा सा भोजन दे दीजिए, कहीं ले जाके खिला दीजिए, अगर वाकई ज़रूरतमंद है तो कुछ तो दुआ हमें भी मिलेगी। आगे देखते हैं। भूख के मारे उन बच्चों के ओट सूख गए हैं, जब खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता तो ओट सूख जाते हैं। हम बड़े लोगों के ओट गर्मी के कारण सूख जाते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा गर्मियों में ओट कट जाते हैं, कभी कभी खून भी आने लगता है, मगर यहाँ दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूख के मारे इनके ओठ सूख गए हैं। शायद इनको बहुत समय से पानी भी नहीं मिला है। क्या उनके भाग्य को बनाने वाले ने क्या रचा है? ऐसे कौन से कर्म थे कि ऐसी दयनीय स्थिति है? ये बच्चे हर किसी को बड़ी उम्मीद से देखते हैं कि शायद कुछ मिल जाए, शायद कुछ अनाज मिल जाए और उनके शरीर में जान आ जाए। हर बार अपने भाग्य को कोसते हैं, विधाता को भी कोसते हैं, भगवान को भी कोसते हैं। कैसा जीवन क्यों दिया आखिर, इतना कष्ट क्यों? छोटे छोटे बच्चे तो हैं, आंसुओं की घूंट पीकर रह जाते हैं, क्योंकि हर बार दूसरों से भीख मांगनी है। आवाज में करुणा चाहिए, दर्द चाहिए, साथ ही भगवान को कोस भी रहे हैं, अपने नसीब को भी कोस रहे हैं और दूसरों से दया की उम्मीद कर रहे हैं। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, भिखारी के साथ और कौन कौन है, भिक्षुक के साथ और कौन कौन है? भिक्षुक के साथ उसके दो बच्चे हैं और दोनों ही भिक्षुक के समान ही भूखे और प्यासे हैं। बच्चे अपने हाथों से कौन सा कर्म कर रहे हैं? बच्चे अपने बाएं हाथ से पेट मल रहे हैं और दाएं हाथ से दूसरों की दया की उम्मीद कर रहे हैं। वो दया की उम्मीद भिक्षा के रूप में है। बच्चों के दाहिने हाथ फैले हुए हैं कि कोई उन पर दया कर दे और उन्हें एक मुट्ठी अनाज दे दे। कविता का अगला चरण देखते हैं। चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए, कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा, मैं सींच दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख को मैं अपने हृदय में खींच लूँगा, तुम्हारे दुख को मैं अपने हृदय में खींच लूँगा, अपने हृदय में खींच लूँगा। इस पद की व्याख्या कुछ इस तरह से है। कवि यहाँ पर बच्चों की स्थिति बता रहे हैं और कहते हैं बच्चे बहुत ही भूखे हैं। उन्होंने पिछले चरण में बताया था कि भूख के मारे उनका पेट मरोड़ रहा है, दर्द हो रहा है, वो बच्चे अपना पेट मल रहे हैं और स्थिति ऐसी हो जाती है कि अब उनसे सब्र नहीं होता, उनके पास और अपनी भूख को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। सड़क पर जो जूठी पत्तलें पड़ी हुई हैं वो उनको चाटने तक के लिए मजबूर हो गए हैं। मगर भाग्य तो देखिए, यहाँ पर उनसे भी झगड़ा करने के लिए कोई खड़ा है और वो कौन है? कुत्ते हैं। वो कुत्ते झपट रहे हैं उसी पत्तल के लिए। हे प्रभु, ऐसी स्थिति कभी किसी की ना करना। कभी उन बच्चों से कहते हैं ठहरो, ज़रा रुको, मेरे हृदय में अमृत है, मेरे पास बहुत ताकत है, मैं तुम्हारी सारी तकलीफें दूर कर दूंगा, तुम ज़रा सा ठहरो। यहाँ पर कवि अपने आप को ईश्वर का रूप मानते हैं, कहते हैं ईश्वर ने मुझ में थोड़ी तो ताकत दी है, मैं इनको अपनी ताकत के सहारे जीने की प्रेरणा दूंगा। कवि कहते हैं मैं तुम्हें अभिमन्यु सा बना दूंगा। अभिमन्यु की कहानी तो आप सभी जानते होंगे। जब युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध, अभिमन्यु को केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता था, निकलना नहीं आता था, मगर उन्होंने बड़ी वीरता से युद्ध लड़ा था। यहाँ पर कवि भी इन भिक्षुक बच्चों को कहते हैं मैं तुम्हें अभिमन्यु सा बना दूंगा, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत भर दूंगा, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत भर दूंगा, तुम्हारे सारे दुखों को मैं अपने हृदय में समेट लूँगा और मैं तुम्हें अभिमन्यु सा वीर महान बना दूंगा। दिल को पिघला देने वाली कविता, मगर साथ ही कवि की कल्पना की तारीफ करते हैं। कैसे हम दूसरों को उम्मीदों से भर देते हैं। बस सोच की बात है, आप भी अच्छा सोचिए, आप ज़रूर अच्छा कर पाएंगे। और ये पाठ तो हमारी युवा पीढ़ी के लिए है, एक बहुत बड़ा स्टेप, एक नई सोच। आइए इस पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं। इस कविता का मेन हीरो भिक्षुक है। यहाँ पर भिक्षुक पे एक प्रश्न बनता है, भिक्षुक की दीनहीन दशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यहाँ पर आप बता सकते हैं, भिखारी को देख करके एक क्षण के लिए हृदय के दो टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसने काफ़ी समय से भोजन नहीं किया है, उसका पेट और पीठ आपस में मिल गए हैं, बुढ़ापे के कारण और कमजोरी के कारण वो चल नहीं पा रहा है, एक लकुटिया के सहारे चल रहा है, एक लकड़ी के सहारे चल रहा है। यहाँ पर एक और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, भिक्षुक कविता आपको किस तरह से प्रभावित करती है, क्या आप किसी तरह से समाज का सुधार कर सकते हैं? जी हाँ, हम कर सकते हैं। भिक्षुक कविता समाज का सजीव चित्रण करती है, साथ ही हमें प्रोत्साहित करती है दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों को सही रास्ता दिखाने के लिए। और यहाँ पर कवि हमें हमारी शक्तियों से परिचित कराते हैं कि हम में वो शक्ति है जो अर्जुन के पास थी। अर्जुन ने अभिमन्यु को शक्ति दी थी, हम भी शक्ति दूसरों को दे सकते हैं, बस सोचने की बात है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको कविता अच्छे से समझ में आई होगी और ज़रूर कुछ सोचने के लिए प्रेरित किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा और समझ में आया तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अपने समाज को सुधारने के लिए कुछ नए स्टेप्स कदम आगे बढ़ाइएगा। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कहीं डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।